आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गीय जीवन रोटी, आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन, सबसे उत्तम ज्ञान यही है। आओ सुने सत्य वचन।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही वो सत्य वचन है जो हमें आत्मिक सामर्थ और शांति देता है और अंधकार में भटकने से हमें बचाता है। तो आइए हम कुछ देर के लिए आज के वचन को ध्यानपूर्वक सुनें और अपने जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, नमस्कार। मुझे आशा है कि आप आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को सुनने के लिए अपनी कॉपी व पेन लेकर बैठे हैं और मुझे ये भी आशा है कि आप सकुशल हैं, अपने परिवार में खुश हैं, क्योंकि जो लोग परमेश्वर को मानते हैं और परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता है और अपनी आशीषें व बरकतें उनके घरों में उंडेलता है। तो आइए हम आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ करें और देखें कि परमेश्वर आज हमें कौन सा नवीन सत्य सिखाना चाहता है। आज हम अय्यूब की पुस्तक के 18वें और 19वें अध्यायों का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा मुख्य विषय है बिल्दद का दूसरा वृत्तांत। ये शूही बिल्दद का दूसरा दौर है। हालांकि वो खंडन करता है परंतु इस बार भी वो कोई नई बात नहीं करता। आपको याद होगा कि वो परंपरावादी है। उसके बाद बहुत सी कथाएं, कहावतें, चुटकले हैं। बातें तो वो अच्छी करता है परंतु उससे अय्यूब को कोई फायदा नहीं होता। आइए हम देखें 18वें अध्याय का 1-3 पद तक लिखा है, तब शूही बिल्दद ने कहा, तुम कब तक फंदा लगाकर वचन पकड़ते रहोगे? चित लगाओ, तब हम बोलेंगे। हम लोग तुम्हारी दृष्टि में क्यों पशु के तुल्य समझे जाते हैं और अशुद्ध ठहरे हैं? असल में बिल्दद कह रहा है, अय्यूब यदि मुंह बंद करेगा तभी हम बोल पाएंगे। ठीक तो ये रहता कि ये सब बातें करना बंद करके सुनना शुरू करते। अभी वो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें, परमेश्वर अय्यूब को उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार कर रहा है। मेरे मित्र, बिल्दद अय्यूब से ये भी पूछता है कि वो उन्हें क्यों तुच्छ गिन रहा है। ऐसा लगता है कि अय्यूब के मित्र आए तो मित्र भाव से थे परंतु मित्र नहीं रहे। हम देखेंगे 18वें अध्याय के 4वें पद में लिखा है, हे अपने को क्रोध में फाड़ने वाले, क्या तेरे निमित्त पृथ्वी उजड़ जाएगी और चट्टान अपने स्थान से हट जाएगी? बिल्दद प्रश्न करता है, क्या परमेश्वर तेरे लिए ही इस संसार को चलाएगा? आप जानते हैं कि वो परंपरावादी है। वो मानता है कि भूतकाल की बातें सही हैं। इस कारण ये बातें आज भी ठीक है। वो इसी बात पर जोर देता है कि अय्यूब, तू कुछ बुद्धि से काम ले ताकि हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकें। तू क्या समझता है कि तेरा हमें तुच्छ समझना और परमेश्वर की बातों के प्रति गुस्सा तुझे इस दुख से छुड़ाएगा? आइए हम 5वें पद को देखें। 5वें पद में लिखा है, तो भी दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लौ ना चमकेगी। मेरे मित्र, ये लोग बिल्कुल भी सही नहीं बोल रहे हैं। आइए हम 18वें अध्याय के 6-8 पदों को देखें। लिखा है, उसके डेरे में का उजियाला अंधेरा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा। उसके बड़े बड़े फंदे छोटे हो जाएंगे और वह अपनी दी युक्ति के द्वारा गिरेगा। वह अपना ही पांव जाल में फंसाएगा, वह फंदों पर चलता है। अय्यूब तू तो मछली के समान जाल में फंस गया है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। वह कहते हैं, हम तो तेरी मदद करने आए थे, परंतु तू हमारी सुन ही नहीं रहा। तेरी ये दशा पाप के कारण हुई है, तू फंदे में फंसा है। आइए हम 9 और 10 पद को देखें, उसमें क्या लिखा है, आप अपनी बाइबल में ध्यान से देखें। लिखा है, उसकी एड़ी फंदे में फंस जाएगी और वो जाल में पकड़ा जाएगा। फंदे की रस्सियां उसके लिए भूमि में और जाल रास्ते में छिपा दिया गया है। मेरे मित्र, उसके दोस्त उसको कहते हैं, तू भालू के जैसा पिंजरे में फंस गया है, अब तक तो तू हमें मूर्ख बनाता रहा, यदि ये सच नहीं होता तो तू नहीं फंसता। आप देखें, बिलदत लोगों को धार्मिक सलाह देता है, पहले आप तथ्यों पर गौर करें और फिर स्वयं निष्कर्ष निकालें, और निष्कर्ष ये है कि अय्यूब के जीवन में पाप है, उसके जीने का ढंग सही नहीं है, इसी कारण ये दुख उसके जीवन में है। अय्यूब के मित्र उसे जीवन के सिद्धांत बता रहे हैं, परंतु इनका ढंग गलत है। बिलदत कहता है कि अय्यूब अपनी करनी का फल भुगत रहा है। आइए हम देख लें अय्यूब की पुस्तक और उसके 18वें अध्याय का 11 से 17 पद तक। अय्यूब की पुस्तक 18 अध्याय 11 से 17 तक लिखा है, चारों ओर से डरावनी वस्तुएं उसे डराएंगी और उसके पीछे पकड़कर उसको भगाएंगी। उसका बल दुख से घट जाएगा और विपत्ति उसके पास ही तैयार रहेगी। वह उसके अंग को खा जाएगी, वरन काल का पहलौठा उसके अंगों को खा लेगा। अपने जिस डेरे का भरोसा वह करता है उससे वह छीन लिया जाएगा, और वह भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाएगा, जो उसके यहाँ का नहीं है, वह उसके डेरे में वास करेगा और उसके घर पर गंधक छितराई जाएगी। उसकी जड़ तो सूख जाएगी और डालियां कट जाएंगी, पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा और बाजार में उसका नाम कभी ना सुन पड़ेगा। वह उजियाले से अंधियारे में धकेल दिया जाएगा और जगत में से भी भगाया जाएगा। मेरे मित्र, यहाँ पे बिलदद अय्यूब पर प्रहार कर रहा है, यानी वो बातों का प्रहार। वो कहता है कि दुष्टों को बीमारी खा जाएगी, परमेश्वर उनका डेरा ढा देगा, उसका परिवार नाश हो जाएगा, लोग उसके विनाश को याद करेंगे। ये बात दुष्टों के बारे में सही हो सकती है, परंतु अय्यूब के बारे में सही नहीं हो सकती। देखें, कोई बात एक समय सही हो सकती है, परंतु हर बात ठीक नहीं हो सकती। इसी कारण आज बहुत से लोग गलत सलाह देते हैं, बहुत से अच्छे मनोचिकित्सक भी गलत ढंग से काम करते हैं। मेरे मित्र, अय्यूब के मित्र उसके दोस्त उसे सलाह देना चाहते हैं। बिलदद कहता है, दुष्टों का न्याय होगा, आप हमारे समय के तानाशाहों यानी हिटलर, स्टालिन एवं दूसरों पर ध्यान दें, क्या इनके विषय में ये बात सही नहीं है, जैसे वे जिए वैसे ही मर गए। हालांकि बात तो बिलदद सही कह रहा था, परंतु ये बात अय्यूब पर लागू नहीं होती। आइए हम 18वें अध्याय के 18वें पद को देख लें, यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, वह उजियाले से अंधियारे में धकेल दिया जाएगा और जगत में से भी भगाया जाएगा। ये दुष्टों का काव्यात्मक वर्णन है, परंतु ये अय्यूब पर लागू नहीं हो रहा है। मेरे मित्र, हम पढ़ेंगे 19 और 20 पद। यहाँ पर लिखा है, उसके कुटुंबियों में उसके कोई पुत्र पोत्र ना रहेगा और जहां वह रहता था वहां कोई बचा ना रहेगा। उसका दिन देखकर पूर्वी लोग चकित होंगे और पश्चिम के निवासियों के रोए खड़े हो जाएंगे। मेरे मित्र, सबको नाती पोते पसंद होते हैं, वे घमंड एवं संतुष्टि का कारण बनते हैं। अगर देखा जाए तो कई बार दुष्टों के यहाँ ज्यादा बच्चे होते हैं। बिलदद यहाँ बहुत ही मूर्खता की बात कर रहा है, क्योंकि अय्यूब के सब बच्चे मर चुके हैं, कम से कम उसे इस समय तो ये बात नहीं करनी चाहिए थी। बाद में परमेश्वर अय्यूब को और बच्चे देता है। आइए हम 21वें पद में पढ़ें। निसंदेह कुटिल लोगों के निवास स्थान ऐसे हो जाते हैं, और जिसको ईश्वर का ज्ञान नहीं रहता उसका स्थान ऐसा ही हो जाता है। मेरे मित्र, बिलदद दुष्टों के बारे में बताता है, वो अय्यूब को दुष्ट गिन रहा है, इसी कारण ये विपत्ति उस पर पड़ी है। उसके मित्र अय्यूब की विपत्ति का दूसरा कोई कारण सोच ही नहीं पाए। वो ये मानते हैं कि अय्यूब पापी है। आप अय्यूब के उत्तर को देखें, वो कहता है कि परमेश्वर ने ही उसे फंसाया है, परंतु इसका कारण नहीं बताया। इसका अर्थ ये हुआ कि वो अपने मित्रों के दिए गए कारण से सहमत नहीं है। और अब हम 19वें अध्याय को आरंभ करेंगे, और इसका मुख्य विषय है बिलदद को अय्यूब का उत्तर। आप देखें कि अब अय्यूब ये गलती कर रहा है। उसे मालूम है कि उसके मित्र गलत हैं, परंतु उनका गलत होना उसे सही नहीं ठहराता। अय्यूब की सोच भी गलत है। इस समय वो परमेश्वर के बारे में गलत सोचता है। आइए हम 19वें अध्याय का पहला और दूसरा पद पढ़ लें। यहां पे लिखा है, तब अय्यूब ने कहा, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे। श्रोता मित्र, यदि ये लड़ाई फुटबॉल के खेल के समान होती तो टीम का प्रशिक्षक कहता कि विरोधी टीम ने हमारी रक्षा पंक्ति को तोड़ डाला है। अय्यूब के मित्रों ने भी उसकी सुरक्षा पंक्ति को तोड़ डाला। आइए हम देखें, तीसरे पद में लिखा है, इन 10 बार तुम मेरी निंदा करते रहे, तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो। वो अपने बोलने से अय्यूब से दूर होते गए। अय्यूब का भी बर्ताव ठीक नहीं है। वो ये मान रहा है चूंकि उसके मित्र गलत हैं, इस कारण वो ठीक है। आप देखें, यदि अय्यूब का विवेक उसे परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराता तो क्या वो ऐसा सोचता? मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अय्यूब को अपने मित्रों के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए था। ऐसी स्थिति में दुर्भाग्य से हम सोचते हैं कि उत्तर देकर हम अपना बचाव कर रहे हैं। मैं मेरे जीवन में उसके वरदानों, प्रचार एवं सिखाने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, परंतु मैं आपको बताऊं कि ये वरदान खतरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई हमारी आलोचना करेगा हम अपने प्रचार से उसका मुंह बंद कर सकते हैं। कई बार लोग मुझे सलाह देते हैं, आपको अपना बचाव करना चाहिए, परंतु मैं सोचता हूं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। जैसा किसी ने कहा है, आपके मित्रों को आपके स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, और आपके शत्रु आप पर विश्वास नहीं करते हैं। मैंने ये बात सीखी है कि समय सबको ठीक प्रकार उत्तर देगा। मेरे हिसाब से मनुष्य को अपना बचाव नहीं करना चाहिए। मेरा अय्यूब को सुझाव होगा कि वो अपने मित्रों को उत्तर ना दे। अच्छा तो ये होता कि वो इनकी सुनकर चुप रहता, परंतु वो अपना बचाव बड़ी सफाई से कर रहा है। मैं सोचता हूं कि अय्यूब को चुप रहना चाहिए था। अपने मित्रों का सामना करके वो उनसे दूर हो गया। वो चुप रहकर बहुत 10 उलाहनों से बच सकता था। आइए हम चौथे पद में देखें, यानी 19वें अध्याय के चौथे पद को। लिखा है, मान लिया कि मुझसे भूल हुई, तो भी वह भूल तो मेरे ही सिर पर रहेगी, मेरे सिवाय मेरी गलती को कोई नहीं जानता। उसके मित्र उसके पाप को नहीं ढूंढ पाए। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे भी अपने पाप का ज्ञान नहीं है। किसी ने कहा है कि परमेश्वर ने हमें सिद्ध नहीं बनाया, परंतु हमारी गलतियों के प्रति अंधा बनाया है। हालांकि परमेश्वर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, फिर भी ये बात सही है कि हम अपनी गलतियों को नहीं देख पाते हैं। अय्यूब के साथ भी ऐसा ही हुआ। आइए 19वें अध्याय के 5 और 6 पद को पढ़ें। यहां पर लिखा है, यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो और प्रमाण देकर मेरी निंदा करते हो, तो ये जान लो कि ईश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फंसा दिया है। मेरे मित्र बिलदद कहता है कि वो फंदे में फंस गया है, परंतु अय्यूब कहता है कि वो स्वयं परमेश्वर ने उसे फंदे में फंसाया है। हो सकता है अय्यूब को परमेश्वर ने फंदे में फंसाया हो और अय्यूब को इसका स्पष्टीकरण ना दिया हो। अय्यूब के मित्र तो अय्यूब को ही दोषी मानते हैं। अय्यूब अपने मित्रों से विनती करता है, आइए हम पढ़ लें 19वें अध्याय का 7-11 पद तक। यहां पर लिखा है, देखो मैं उपद्रव उपद्रव यों चिल्लाता रहता हूं परंतु कोई नहीं सुनता, मैं सहायता के लिए दुहाई देता रहता हूं परंतु कोई न्याय नहीं करता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है कि मैं आगे चल नहीं सकता और मेरी डगरें अंधेरी कर दी हैं। मेरा विभव उसने हर लिया है और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया है, बस मैं जाता रहा और मेरा आसरा उसने वृक्ष की नाई उखाड़ डाला है। उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया है और अपने शत्रुओं में मुझे गिनता है। मेरे मित्र अय्यूब शिकायत करता है कि परमेश्वर ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया है और इसके पीछे कोई कारण है, परंतु जैसा उसके मित्र सोचते हैं वो बात नहीं है, लेकिन स्वयं अय्यूब को भी इसका कारण मालूम नहीं है। उसके भाई उससे दूर हो गए हैं, उसके दास भी उसकी नहीं सुनते, उसकी पत्नी उसे तुच्छ जानती है, लड़के उसे ताना मारते हैं, उसकी खाल उसकी हड्डियों से चिपक गई है। मैं बाल बाल बचा हूं, मुझ पर दया करो, अय्यूब ऐसे कहता है। आइए हम 23 और 24 पद पढ़ लें। लिखा है, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता वह पुस्तक में लिखी जाती और लोहू की टांकी और शीशे में सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। अच्छा होता उसके शब्द लिखे जाते, कोई उसका घनिष्ठ शत्रु ही इन बातों को लिखते। देखो मेरा शत्रु मेरे विषय में ये कहता है कि उसे मेरी बड़ाई करनी पड़ेगी। क्या आप चाहेंगे कि आपका कोई शत्रु आपकी जीवनी लिखे? मैं तो निश्चय रूप से ये नहीं चाहता, क्योंकि मैं परमेश्वर की पुस्तक से ही संतुष्ट हूं। इस पुस्तक में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। अय्यूब अपने विश्वास की बात करता है, हालांकि उसके मित्र उसे ताड़ना का प्रयास करते हैं। यह शैतान की घिनौनी चाल है। शैतान उसे उस स्थान तक ले आया जहां वो परमेश्वर के सामने दीन नहीं रहा, बल्कि अपने आप को निर्दोष ठहराने का प्रयास करता है। उसके मित्र उसे पूरी तरह से नहीं तोड़ पाए, क्योंकि उसका विश्वास सच्चा और अटूट था। बाइबल में उसका विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक मरने वाला व्यक्ति इसे बोल रहा है। उसका सब कुछ समाप्त हो गया है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान के हाथ के नीचे दबा हुआ है। आइए हम 25 से 27 पदों में देखें क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और ना कोई दूसरा, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। मेरे मित्र अय्यूब इस बीमार अवस्था में परेशानियों के बोझ से दबा हुआ है। वो मरना चाहता है जिससे सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मुझे निश्चय है कि उसे पुनरुत्थान के विषय में मालूम था। यदि कीड़े उसे खा भी लेंगे तो भी वो परमेश्वर को देखेगा। मेरे प्रिय श्रोता, हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। जो मसीह में मरे हैं वो सो जाएंगे, परंतु आत्मा मसीह के पास जाएगी। ये कितनी अद्भुत बात है। इस बात को कहने के लिए अय्यूब दोबारा अपने मित्रों को पुकारता है। आइए हम अय्यूब की पुस्तक के 19वें अध्याय के 28 और 29वें पद को पढ़ लें, यानी कि अंतिम पद। यहां लिखा है, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है, और तुम जो कहते हो हम इसको क्यों कर सताएं, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि जल जलाहट से तलवार का दंड मिलता है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। मेरे मित्र, जो बातें तुमने कही, क्या उनके विषय में तुम परमेश्वर के न्याय से नहीं डरते हो? अय्यूब ऐसा कह रहा है। उनके सारे आरोपों के बावजूद भी अय्यूब का विश्वास दृढ़ बना रहा। उसे विश्वास है कि उसका छुड़ाने वाला आ रहा है। वो अपनी गिनती छुड़ाए हुए लोगों में करता है। क्या आज मैं और आप भी क्या अय्यूब के समान अपने विश्वास का दावा करते हैं? क्या हम अपनी गिनती उन छुड़ाए हुओं के बीच में करते हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धो दिया? प्रभु यीशु मसीह का लहू हम याद करें कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया, यानी अपने लहू का एक एक कतरा हमारे लिए बहा दिया। वो बेशकीमत लहू जिसका मूल्य कोई संसार और संसार की दौलत नहीं चुका सकती है। वो बेशकीमत लहू जो हर एक के साथ मेल खाता है, जो हर एक को चंगा करना चाहता है, जो हर एक के हृदय को धो देना चाहता है। लेकिन क्या मनुष्य आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार है? आज बहुत कम लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता ग्रहण कर लें, यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो प्रभु यीशु आज ही आपको सारी चिंताओं और फिक्रों से छुड़ा लेगा, क्योंकि वो मुक्तिदाता है, छुड़ाने वाला है। और यदि आप आज हृदय से उसको पुकारते हैं तो वो आपके घर में वास करेगा, आपके साथ वो आपके घर में मौजूद होगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि मनुष्य की देह परमेश्वर का मंदिर है, और यदि मनुष्य की देह परमेश्वर का मंदिर है तो आप इस देह को नाश ना करें, बल्कि इस देह को, इस शरीर को जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, इसे परमेश्वर के लिए खर्च करें। तो इन्हीं वचनों के साथ हम आज का सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में हम पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
Cheers.
कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद। श्रोता, हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आत्मिक रूप से प्रोत्साहन मिला होगा। यदि आप इस विषय में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक पोस्टकार्ड के द्वारा तुरंत इस पते पर हमसे संपर्क करें। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। इसी के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।